हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये बात हम अक्सर सुनते हैं और अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिविटी भी है, जहां भगवान है वहां शैतान भी है, और शैतान कहीं और नहीं हमारे अंदर ही वास करता है, उसी तरह जैसे हम सब में भगवान वास करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद पर किसको कितना हावी होने देते हैं। जरूरी नहीं कि हर खूबसूरत दिखाई देने वाली चीज अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हो। एक जलते हुए दिए के तले भी अंधेरा ही होता है, इसलिए हमें महज अच्छाई को नहीं बल्कि बुराई को भी अपनाना पड़ेगा, वरना हम सिर्फ एक झूठ के साथ जीते रहेंगे। पुलकित ने अभी अभी ग्रेजुएशन की थी और अब नौकरी की तलाश में था। वो अपने छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर जाना चाहता था। पिछले कई सौ साल से उसका परिवार सतना के एक छोटे से गांव में ही रहता था। पुलकित ने अपनी ग्रेजुएशन तो जबलपुर से कर ली थी, पर अब वो चाहता था कि वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में जाकर अपनी जिंदगी बनाए। वो आगे बढ़ना चाहता था। गांव में जब भी वो ये बात किसी से कहता तो लोग उसकी हंसी उड़ा देते और वो झेप जाया करता था। वो एक खुले विचारों का लड़का था जो फर्राटेदार अंग्रेजी भी जानता था। बात है 1971 की। पुलकित की मौसी भोपाल के पास विदिशा में रहती थी। मौसी की बेटी की शादी में जाने के लिए पुलकित भी बहुत उत्सुक था। उम्र में तो उसकी बहन उससे काफी छोटी थी, पर उन दिनों लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। मौसी के घर पहुंचा तो उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। शादी का घर था तो आस पड़ोस के भी सभी लोग वहां मौजूद थे। पुलकित एक हट्टा कट्टा नौजवान था। कॉलेज खत्म हो गया था तो अब वो दिन के 3 से 4 घंटे सिर्फ कसरत करता था। सबसे मिलते हुए उसका ध्यान एक महिला पर गया जो अकेली एक कोने में खड़ी उसे देख रही थी। उसकी नजर भी उसी महिला पर टिक गई और उसका बदन मानो अपने आप ही उसकी तरफ खींचा चला गया। पलक झपकते ही वो उस महिला के सामने खड़ा था और उसे देखे ही जा रहा था। आसपास का शोर एकदम से बंद हो गया था। आज से पहले उसने इतनी सुंदर औरत कभी नहीं देखी थी। मानो किसी मूर्तिकार ने उसे बनाया हो। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, घुटनों तक घुंघराले लंबे बाल, माथे पर बड़ी सुर्ख लाल बिंदी। उस महिला ने पुलकित से उसका नाम पूछा तो जैसे वो एक सपने से बाहर आया हो। आसपास की आवाजें उसके कान में पड़ी तो वो होश में आया। अपने आप को संभालते हुए उसने अपना नाम बताया और उस महिला का नाम पूछा, कामिनी। उस महिला ने उसके कान के पास आकर फुसफुसा कर कहा और वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। पुलकित बस उसे ही देखता रह गया। तभी पास खड़ी उसकी भाभी ने उसे आवाज दी। इससे पहले कि भाभी उससे कुछ कहती, पुलकित ही बोल पड़ा, ये कौन है भाभी? इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा यहां पर। चुड़ैल है चुड़ैल, इससे जरा दूर ही रहना, बंगालन है, जादू टोना कर देगी तुझ पर, शादीशुदा होकर भी इसके लक्षण देखो। हाँ क्या भाभी, आप भी ना, अच्छी खासी औरत को चुड़ैल बना दिया। मत मान मेरी बात, बाद में मत कहना बताया नहीं। अपनी भाभी की बात को नजरअंदाज करके पुलकित फिर कामनी के ख्यालों में खो गया। शादी के कामकाज में दिन का पता ही नहीं लगा। अक्टूबर का महीना था और हल्की हल्की ठंड थी। घर की महिलाएं भीतर सो रही थी और पुरुष घर के बरामदे में। सोने के लिए पुलकित अभी लेटा ही था कि उसे गहरी नींद आ गई। आसपास सब सोए हुए थे कि अचानक पुलकित ने किसी औरत की आवाज सुनी। उसे लगा कि घर के अंदर कोई बात कर रहा होगा, लेकिन फिर उसे अपने कान में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। ये आवाज उसे जानी पहचानी लगी। वो उस आवाज को ढूंढने लगा और अपने आप उसके कदम उसे घर से बाहर ले गए। जैसे जैसे वो उस आवाज का पीछा कर रहा था, वो उसे और साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसके कदम एक घर के बाहर रुके जिसका दरवाजा खुला हुआ था। पुलकित अपने वश में नहीं था, इसलिए उसे किसी के घर में घुसने में भी कोई तकल्लुफ महसूस नहीं हुआ। अंदर पहुंचकर जो उसने देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। सामने पलंग पर कामिनी किसी दुल्हन की तरह सजी धजी बैठी थी, गहनों से लदी हुई बंगाली साड़ी में, और उसने अपने दोनों हाथ पुलकित की तरफ करके उसे पास आने का इशारा किया। पुलकित धीरे धीरे उसके पास जाता गया और कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। सुबह उठा तो पुलकित अपनी मौसी के घर में उसी बिस्तर पर था जहां वो रात को सोया था। वो हड़बड़ा कर सोचने लगा कि जो रात को हुआ वो उसका सपना था या हकीकत, मगर उसका शरीर तो कुछ और ही कह रहा था। उसके पूरे बदन में एक अजीब सा दर्द था और अकड़न थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, होंठ सूखे हुए थे, नाखून नीले पड़े हुए थे और पेट में एक अजीब सी उथल पुथल थी। पुलकित भूत प्रेत चुड़ैल जादू टोना जैसी बातों को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। शायद इसीलिए उसने अपने शरीर के साथ होने वाले इस बदलाव को भी महज अपनी थकान समझकर टाल दिया और शादी के काम काजों में लग गया। कल बहन की शादी थी और इन सब बातों पर ध्यान देने का वक्त नहीं था। दोपहर को खाने पर कामनी भी आई। जैसे ही पुलकित की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में रात का पूरा वाकया दौड़ गया। एक अजीब सा सम्मोहन था कामिनी में जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था। कामिनी की आंखों की चमक उसे अपने पास बुला रही थी। पुलकित उसके पास पहुंचता कि इससे पहले उसे किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। वो घर के बाकी लोगों के साथ बाहर गया तो उसने देखा कि बगल के घर से रोने की आवाजें आ रही हैं। जब वो उस घर के अंदर गया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां एक लड़के की लाश पड़ी थी जो लगभग उसी की उम्र का रहा होगा, मगर उसकी हालत बहुत दर्दनाक थी। उस लाश का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था, चमड़ी हड्डियों से चिपक गई थी जैसे किसी ने उसका पूरा खून निचोड़ लिया हो। आंखें बाहर निकल गई थी और जीभ काली थी। उस लड़के की मां रो रो कर कह रही थी कि ये मुड़िया पैरी का ही काम है जो उसके बेटे को खा गई, उसका सारा खून पी गई। पुलकित ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं हो पाया और बाहर निकला तो उसने अपने मौसेरे भाई से पूछा कि ये सब क्या है और कौन है ये मुड़िया पैरी। उसके भाई ने धीमे स्वर में कहा, यहां नहीं, छत पर चलो। छत पर पहुंचकर पुलकित के भाई ने उसे बताया कि कई सालों से उनके इलाके में इस तरह की लाशें आए दिन मिलती हैं। लोग मानते हैं कि ये मुड़िया पैरी का काम है। मुड़िया पैरी का मतलब एक ऐसी चुड़ैल जिसके पैर मुड़े हुए हों, यानी कि उल्टे हों। वो जवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है और उनके साथ संबंध बनाने के बाद उनका पूरा खून चूस लेती है ताकि वो हमेशा जवान और खूबसूरत रह सके। लोग ये भी मानते हैं कि वो एक बंगालन है और जादू टोना करती है। पुलकित ने फिरकी लेते हुए अपने भाई से पूछा, कभी किसी ने देखा है इस मुड़िया पैरी को? उसको जो भी देखता है वो उसे अपने वश में कर लेती है। उसके बाद कोई शक्ति तुम्हें उससे बचा नहीं सकती। कुछ लोगों ने उसकी परछाई देखी है और हफ्तों तक बीमार रहे। दिन में वो किसी आम औरत की तरह रहती है, लेकिन रात को उसके पैर उल्टे हो जाते हैं और वो जवान लड़कों की तलाश में निकल जाती है। मैं इन सब बातों में नहीं मानता, ये जरूर कोई बीमारी है जो यहां जवान लड़कों को हो रही है। अनपढ़ लोग इसको भूत प्रेत चुड़ैल का नाम दे देते हैं। यही अंधविश्वास तो हमारे देश की तरक्की को रोक रहा है मेरे भाई। अब चलो, बहुत काम पड़ा है। पुलकित नीचे आकर कामनी को खोजने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी और फिर वो अपने काम में लग गया। कामनी के लिए उसकी प्यास अब बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा उसने आज तक महसूस नहीं किया था। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। दिन में खाना खाने के बाद उसकी आंख लग गई और उसे अजीब अजीब से सपने आने लगे। उसने देखा कि कामनी अपने कमरे में बैठी है और उसके आसपास जादू टोने का सामान पड़ा है और वो एक खोपड़ी में भर के खून पी रही है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और जैसे ही उसके बाल हटते हैं तो उसका भयानक चेहरा सामने आ जाता है। एक गला हुआ चेहरा, दांत टूटे हुए और चेहरे में बहुत सारे गड्ढे जिसमें से कीड़े मकोड़े केचुए निकल रहे हैं। फिर उसकी नजर उसके पैरों के पास जाती है तो वो देखता है कि उसके पैर उल्टे हैं। वो सपना इतना गहरा था कि पुलकित चाहकर भी उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा था। आगे उसने देखा कि कामनी अपने उल्टे पैरों से चलकर उसकी तरफ आ रही है और फिर कह रही है,
अब तेरा गरम गरम खून पीऊंगी मैं राजा।
पुलकित को उसकी भाभी ने नींद से जगाया। वो पूरा पसीने में नहाया हुआ था। उसके दिल की धड़कन बड़ी हुई थी और वो हांफ रहा था। वो बुरी तरह डर गया था। उसका हलक एकदम सूखा हुआ था। उसकी भाभी ने उसे पानी पिलाया और फिर पूछा, क्या हुआ? पुलकित के मुंह से सिर्फ एक ही लफ्ज निकला, मुड़िया पैरी। खौफ से भाभी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानती थी कि अब आगे क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं वो ये भी जानती थी कि कामिनी ही मुड़िया पैरी है। तभी उसने पुलकित को सचेत किया था, पर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि पुलकित भी मुड़िया पैरी की बलि चढ़े। इसीलिए उसने पुलकित से कहा कि तुम यहां से चले जाओ वापस, अभी इसी वक्त। तुम एक भी दिन और यहां रुके तो वो तुम्हें अपना शिकार बना लेगी। पुलकित अपनी भाभी की बात मानना तो चाहता था, लेकिन कामिनी का जादू उस पर हावी था। इसलिए उसने अपनी भाभी से कहा कि ये बस एक बुरा सपना था और कुछ भी नहीं। उसकी भाभी ने उसे लाख मनाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, मैं कैसे जा सकता हूं? कल मेरी बहन की शादी है। शादी खत्म होते ही मैं चला जाऊंगा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शादी का घर मातम में बदल जाएगा किसी ने नहीं सोचा था। देर रात तक गाना बजाना होता रहा। आज किसी को नींद नहीं आ रही थी। पुलकित भी कुछ देर के लिए सब भूल गया था और अपने भाई बहनों में मस्त हो गया था कि तभी उसने किसी की परछाई देखी। उसे लगा कि कोई छुपकर घर में झांक रहा है। उसे लगा कोई चोर है, तो वो घर के पीछे चला गया। पीछे कोई नहीं था। उसे ताज्जुब हुआ कि अभी अभी तो उसने किसी को देखा था यहां, लेकिन अब दूर दूर तक कोई नहीं। तभी उसे अपने कान में फुसफुसाहट सुनाई दी।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूं राजा, आ जाओ आओ।
किसी कठपुतली की तरह पुलकित आज फिर उस आवाज के पीछे चल पड़ा और उसी घर के बाहर आ पहुंचा जहां वो कल आया था। वो अंदर गया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन सुबह एक और लाश मिली जिसका खून सूखा हुआ था, आंखें निकली हुई थी, चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई थी।